जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः हरि कथा में आपका स्वागत है। आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरुभाव तिथि और विश्व में भगवत नाम प्रचार का दिवस है, तो श्री कृष्ण कृपा से नामाचार्य के तिरुभाव तिथि के ऊपर विश्व में नाम कीर्तन का जो ये सप्ताह मनाया जा रहा है वो भी आ रहा है। तो हम पहले श्री हरिदास ठाकुर के सौभाग्य का वर्णन करेंगे और उसको सुनने वालों को क्या फल मिलता है, ये श्री चेतन चरितमृत के अंत्य लीला के 11वें अध्याय से पाठ करेंगे और फिर इसी श्री चेतन चरितमृत से नाम महिमा का वर्णन करेंगे। तो पहले आइए सब प्रणाम करते हैं। नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तम च तत्प्रभो संस्थिताम् अपि यनमूर्तिम् स्वअंके कृत्वा न नर्ता यः। कविराज गोस्वामी कहते हैं हम हरिदास ठाकुर को नमस्कार करते हैं और उसके साथ उनके स्वामी प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। जिस हरिदास ठाकुर के शव को, जिसके लिए शब्द लिखा है यम मूर्तिम, जैसे मूर्ति हो भगवान के नाम जप जप के वो भौतिक नहीं रहा, चिन्मय हो गया, मूर्ति का स्वरूप हो गया, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंक में लेकर, स्वअंके अपने अंक में लेकर, इसका मतलब अपनी गोद में लेकर न नृत्य और नृतन किया, ऐसे हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते हैं जिनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने शरीर छोड़ते हुए उस शरीर को मूर्ति मानकर अपनी गोद में ले लिया और बहुत आनंद में विभोर होकर हरि नाम के साथ कीर्तन किया। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद नामाचार्य हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते हैं। तो ये एक संस्कृत में श्लोक अध्याय का शीर्ष में है। फिर चैतन्य महाप्रभु का सब भक्तों के ऊपर कृपा है इसका वर्णन है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो हरिदास ठाकुर जी, हम ये जानते हैं कि उनका जन्म अब जो बांग्लादेश है वहाँ हुआ था और वहीं से उन्होंने उस देश की भूमि को पवित्र करने के लिए नाम कीर्तन शुरू किया था और फिर वो आकर शांतिपुर के पास गंगा के किनारे फुलिया ग्राम में रहे थे और अद्वैत आचार्य का बहुत बड़ा उनके साथ स्नेह था और जहाँ वो रहते थे गंगा जी के किनारे पे, वहाँ पेड़ के अंदर एक छोटी सी गुफा जैसी बनी हुई थी, उधर हरि नाम करते थे। तो गांव वालों ने कहा है यहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है, आप यहाँ मत रहिए। तो हरिदास ठाकुर ने सांप को बुला के कहा, सुनो सांप जी, या तो कल तक यहाँ से आप चले जाओ, नहीं तो फिर हम चले जाएंगे। तो सर्प बाहर निकला, हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया और वहाँ से रवाना हो गए। तो जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आके रहे, तो हरिदास ठाकुर भी जगन्नाथपुरी में आ गए। तो जब हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो हम जानते हैं सिद्ध बाकुल, जो बाकुल वृक्ष है उसको सिद्ध कहते हैं, वहाँ हरिदास ठाकुर ने अपनी कुटिया बनाई ली थी। और वो मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए जगन्नाथ मंदिर के दर्शन पे नहीं जाते थे, लेकिन दूर से ही जो चक्कर ऊपर लगा हुआ है मंदिर के, उसका दर्शन करके प्रणाम करते थे। लेकिन दुनिया सारी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जाती थी, और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरिदास ठाकुर से मिलने आते थे, दर्शन भी देते थे और महाप्रसाद भी लाते थे। तो क्या विचार है, जगन्नाथ का दर्शन करने जाने वाले भाग्यशाली हैं कि हरिदास ठाकुर भाग्यशाली? जिसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु केवल दर्शन नहीं, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ला के देते थे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। तो एक दिन की बात है, संख्या कीर्तन पूर्वे नाही केई मत खाइबा। एक दिन प्रसाद चैतन्य महाप्रभु का सेवक गोविंद लाया और प्रसाद लाके दे दिया हरिदास ठाकुर को। एक दिन गोविंद महाप्रसाद लाया, एक दिन गोविंद महाप्रसाद लाए, हरिदास दीते गेला आनंदित हैया। हरिदास जी को वो महाप्रसाद दिया। अब हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, देखी हरिदास ठाकुर करिया छे शयन, मंद मंद करिते छे संख्या संकीर्तन। देखते हैं तो हरिदास ठाकुर उस दिन बहुत कुछ कमजोर से लग रहे हैं, ऐसे थोड़े लेटे हुए हैं और आस्ते आस्ते हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो गोविंद जी ने कहा, गोविंद कहे उठे आसी कर भोजन, आप उठिए और ये मैं भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लाया हूँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है, आप अब भोजन कीजिए। हरिदास कहे आज ही करीमो लंघन, आज मैं नहीं खाऊंगा। लंघन करने का मतलब आज मैं उपवास करूंगा, आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा। तो गोविंद ने पूछा क्यों नहीं खाओगे, तो कहते हैं संख्या कीर्तन पूरे नहीं कई मते खाइबा। अरे अभी तक मैं जो रोज का नेम से जप करता हूं वो पूरा नहीं हुआ है, तो भोजन कैसे करूंगा। ये बहुत बड़ी प्रेरणा का हरिदास ठाकुर का वाक्य है, जो सब भक्तों के लिए जीवन में धारण करने जैसा है, कि हमने जीवन में जो कम से कम 16 माला का श्रद्धापूर्वक ध्यान पूर्वक जप करने का नेम लिया है, वो अगर पूरा नहीं होता है तो फिर जीवन में खाना पीना सोना इसको नहीं करना चाहिए। किसी भक्त ने श्री प्रभुपाद जी को कहा, बहुत सेवा होती है तो नाम जपने में समय नहीं मिलता है, तो प्रभुपाद जी कहते सोने का समय मिलता है, खाने का समय मिलता है? बोला वो तो मिल जाता है। बोला जिस दिन खाना सोना छोड़ दो उस दिन जपना छोड़ देना। खाना पीना अगर भूल जाए तो भगवत नाम को जपना भूल सकते हैं, इसलिए सावधानी से इतनी सेवा लेनी चाहिए जिस सेवा करते हुए नाम जपने में कहीं रुकावट नहीं पड़े। कभी कभी बहुत उत्साह के साथ ज़्यादा सेवा लेने से नाम जपने में आस्ते आस्ते ढीला पड़ जाता है, तो फिर उसका आगे भक्ति में वृद्धि नहीं होती है। तो नाम जपना हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है, यही तो हमारा एक धन है। और फिर कहते हैं महाप्रसाद आनी आछे के मते उपेक्षबा। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, क्या मैंने नाम पूरा नहीं जपा है तो मैं प्रसाद कैसे खाऊं, और प्रसाद आया है उसका अनादर कैसे करूं। प्रसाद खाया नहीं जाता है, प्रसाद का आदर किया जाता है, तो आनर प्रसाद कहते हैं। प्रसाद को बैठने वाली अपनी जगह से ऊपर होना चाहिए और आदर पूर्वक प्रणाम करके खाना चाहिए। पुराने जमाने में ये भक्तों के नियम होते थे, प्रसाद को प्रणाम करते थे फिर खाते थे। अब ये सब चीज़ें आस्ते आस्ते बहुत ढीली पड़ती जा रही हैं। प्रसाद का यहाँ तक के जगह, अभी प्रसाद आया है इसका अनादर कैसे कर सकता हूँ? मैं सुन रहा था रात एक हमारे सन्यासी महात्मा का, कहते कभी कभी प्रसाद महाप्रसाद लाते हैं तो हम कहते हैं ये दीजिए, ये नहीं ये दीजिए, ये भी प्रसाद का अनादर है। एक प्रसाद को हम अच्छा समझें और एक को कम समझें, ये भी प्रसाद भगवान ने भोग लगा है तो उसका अनादर है। तो श्री प्रभुपाद जी से ऐसे जाके किसी ने कहा कि ऐसे तो प्रसाद सब अपने इच्छा से मांग के लेते हैं, बोले ऐसे करो महाप्रसाद सारा मिक्स कर दिया करो, फिर सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया करो, तो प्रसाद का अनादर नहीं होगा। महाभारत में एक कथा के अंतर्गत मांडुक ऋषि के शराप के कारण धर्मराज एक ही समय धरती के ऊपर राजा युधिष्ठिर के रूप में आए, दासी पुत्र विदुर के रूप में आए और एक वाल्मीकि चंडाल के रूप में आए। भागवत और रामायण लिखने वाले नहीं, दूसरे। तो जब एक बहुत बड़ा महान यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किया, राजसूय यज्ञ, तो कहा इसमें अब शंख अपने आप बजेगा, यज्ञ जब पूर्ण होगा, भोजन सब महात्मा कर लेंगे, शंख बजा नहीं। तो कहा कि कोई महात्मा नहीं आया, बोला सबको जानते हैं सब महात्मा आए हैं, सहदेव जी ने सबका स्वागत किया है। बोला नहीं, आप जाके देखो एक वो चंडालों की बस्ती में वाल्मीकि नाम का महात्मा रहता है, आप उसको निमंत्रण दे के आओ। अर्जुन और भीम वहाँ गए तो देखा तुलसी के सामने बहुत प्रेम से भगवान नाम जप रहा है। उसने कहा मैं अर्जुन हूँ और ये मेरा बड़ा भाई भीमसेन है, हमको महाराज युधिष्ठिर ने भेजा है, आप कल हमारे वहाँ भोजन करने आइए। बोला मैं तो अछूत हूँ, मेरे को काहे के लिए महाराज ने बुलाया है और आप इतने बड़े पांडु पुत्र मुझे लेने आए हैं, ये उचित तो नहीं है। बोला श्री कृष्ण भगवान ने ये आदेश दिया है। तो मन ही मन समझ गया कि भगवान ने मेरे पोल पट्टी खोल दिया, मैं तो छुप के यहाँ बैठा हुआ था, लगा ठीक है कल मैं आ जाऊँगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने रात को कह दिया द्रौपदी सुभद्रा, देखो कल बड़े महात्मा आएंगे, अच्छे से अच्छा जिसको जो व्यंजन बनाना आता है सब तैयार कर लेना। बेचारों ने रात सारी बैठ के 56 भोग बना लिए, क्या 108 भोग बना लिए। और ये महात्मा कल बाहर आया, अपना पात्र लेके बाहर खड़ा था, बोला महाराज मुझे प्रसाद दे दो मैं चला जाऊँ। बोला नहीं अंदर आइए। बोला हमें अंदर आने का अधिकार नहीं है। बोला नहीं महाराज का आदेश है। तो अंदर चला गया, सबने कहा बैठ के भोजन कीजिए। तो जैसे जैसे बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद परोसा तो उन्होंने सब थोड़ा थोड़ा अपने बर्तन में सब मिक्स किया, हलवा भी उसमें डाला, खीर भी उसमें डाली, करेला भी उसमें, दाल भी उसमें, सब्जी भी उसमें, सब कुछ इकट्ठा किया। और जैसे एक निवाला खाया तो शंख बजा और फिर बंद हो गया। तो बोले देखो महात्मा आया तो था, शंख तो बजा, लेकिन आपने कहा बजता रहेगा, बंद क्यों हो गया? भगवान श्री कृष्ण का आप में से किसी ने इसके ऊपर आप में से किसी के मन में दुर्भाव आया है इसलिए शंख नहीं बज रहा है। तो द्रौपदी ने कहा मैं कहती हूँ कि मैंने कहा इतनी सारी रात मेहनत करके अलग अलग व्यंजन बनाए और ये सब गुड़ गोबर कर दिया और सब एक में डाल के और खा रहा है, इसलिए हमारे मन में आया कि खाने वाले महात्मा को खाने का पता नहीं है और हमने इतनी सारी मेहनत की है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप इससे पूछ लीजिए कि इन्होंने ऐसे क्यों किया। तो उन्होंने कहा ऐसे महाराज क्यों किया? बोला देखो ये प्रसाद है, प्रसाद के भोगने का अधिकार भगवान को है, भोगता भगवान है, हम तो उस प्रसाद का आदर करते हैं, इसलिए वो प्रसाद हम कृपा समझ के लेते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे हलवा ही दो और मेरे को करेला नहीं दो तो ये प्रसाद का अनादर हो जाएगा। अब ये भगवान ने भोगा है, मैं उस प्रसाद का आदर पूर्वक उस प्रसाद को पा रहा हूं, मैं स्वाद के लिए नहीं पा रहा हूं, क्योंकि स्वाद तो भगवान को इसका लेना है, हमको तो इसको प्रेम से आदर से पाना है। तो यहाँ हरिदास ठाकुर की कहते हैं कि मैं प्रसाद का अनादर कैसे करूं? ऐसे एक बार वल्लभ आचार्य श्रीपद वल्लभ आचार्य जो चेतना महाप्रभु को अपने घर में भी ले गए थे, प्रयागराज में अड़ियल ग्राम में अपने घर भोजन पे ले गए थे और जगन्नाथपुरी में भी उनसे मिलने आए थे। वो एकादशी के दिन जगन्नाथ मंदिर में गए तो उनको प्रसाद दे दिया। जगन्नाथ मंदिर में एकादशी के भगवान को तो वैसे भी अन्न प्रसाद लगता है। अब वो उसको एकादशी का व्रत है, वो व्रत का भी नेम है और प्रसाद दिया है, प्रसाद की महिमा को भी जानते हैं, खा भी नहीं सकते हैं। तो जब से प्रसाद हाथ में आया, प्रसाद की महिमा गा रहे थे पूरी रात। जब सुबह पारण का समय हुआ तब उस प्रसाद को पाया, तो एकादशी का भी मान रख लिया और प्रसाद का भी सम्मान कर लिया। तो ये प्रसाद कैसे मैं खा सकता हूँ? तो अब हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, ऐसे करते हुए एते बलि महाप्रसाद करिला वंदन, इतना कह के महाप्रसाद की वंदना की। वंदना का महाप्रसाद के गुण गाए, जैसे हम रोज मस प्रसाद से पहले गाते हैं, हाँ माँ महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मण, ये जैसे जो भी वंदना किया, एक और रंच लेना, एक उसमें से थोड़ा सा इतना उठा लिया, तार करीला भक्षण, और उसको अपने मुख में डाल दिया। तो इसके ऊपर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है, कृष्ण प्रसाद भगवान कृष्ण कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो उन्होंने अच्छी तरह से उसको प्रार्थना किया और उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद का बड़ा आदर पूर्वक ग्रहण किया। किसी के पास प्रसाद आता है तो समझ लेना चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण बड़ा दया मोय करीबार जीवा जय स्व प्रसाद अनिंद लो भय, प्रभुपाद ने ये सारा लिखा है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद के पाने से भी हमारी भक्ति में प्रगति होती है। और ये बात प्रभुपाद जी ने इस्कान स्थापना के विषय में कहा कि इस इस्कान की स्थापना विश्व भर में हमने दो ही साधनों से किया है, एक तो मधुर भगवत नाम का कीर्तन किया और दूसरा भगवान का कृपा रूप प्रसाद को वितरण किया। इन दो चीज़ों के द्वारा हमने पूरे विश्व के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की है। किसी बल से नहीं की है, किसी धन से नहीं की है, किसी और यत्न से नहीं की है, केवल हरिनाम संकीर्तन से और भगवत प्रसाद वितरण के द्वारा की है। तो ये प्रभुपाद जी के अपने मुख्य शब्द है कि प्रचार के लिए दो साधन ही सबसे ज्यादा बलवान है। दूसरे दिन आर दिने महाप्रभु तार ठाई आईला, दूसरे दिन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर के पास आए। सुस्त हयो हरिदास बलि तारे पूछिला, और पूछा हरिदास से कि आप ठीक तो हो, आपका स्वस्थ कैसे है? नमस्कार करीते हूं कैला निवेदन, पहले तो प्रणाम किया और फिर उनको प्रार्थना की। शरीर स्वस्थ है मोरा अस्वस्थ बुद्धि मन, शरीर तो ठीक है लेकिन बुद्धि और मन स्वस्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भक्तों से क्या मांगा है? शरीर मांगा है, क्या मांगा है? मैं अर्पित मनो बुद्धिर, मुझे मन और बुद्धि दो। तो मन और बुद्धि स्वस्थ होगा तो भगवान को देंगे ना। शरीर नहीं मांगा है, मन और बुद्धि मांगा है भगवान ने। हरिदास ठाकुर कहते हैं मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। ये प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। असल में प्रसाद का हरिदास ठाकुर ने आदर किया। प्रभुपाद जी किसी बहुत बड़े धनी के घर में प्रसाद खाने ले गए तो बड़ा खुश हो गया वो आजीवन सदस्य बन गया। प्रभुपाद जी भक्तों को कहते हैं देखो हम महाप्रसाद खा के ही सदस्य बना लेते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है, महाप्रसाद खाओ और सदस्य बनाओ। और प्रभुपाद जी को एक बार अमृतसर में बुलाया, बहुत बड़े सम्मेलन में जहाँ बहुत सारे ज्ञानी मायावादी बहुत बड़े सन्यासी थे। वो जानते भी थे तो ये तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके संग अगर भक्त आएंगे पाश्चात्य देश के कीर्तन करेंगे तो हमारा सम्मेलन सफल हो जाएगा। तो प्रभुपाद को निमंत्रण दे के बुलाया। तो वहाँ पहले पहले कीर्तन करते थे भक्त, तो पंडाल भर जाता था, हजारों की संख्या में लोग आते थे। और जैसे वो कीर्तन बंद करते थे वो महात्मा लोग प्रचार करना शुरू करते थे, तब सब लोग चले जाते थे, दो चार बजते थे। तो लोगों ने कहा ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा पहले वो प्रवचन करेंगे बाद में कीर्तन कराएंगे। दो दिन के बाद लोग समझ गए कि कीर्तन बाद में होता है, लोग आते ही बाद में। लोग भी होशियार थे। तो एक दिन प्रभुपाद से उन्होंने कहा कि ये मायावादी लोग सब ऐसे बोलते हैं रोज का, तो हम यहाँ आए क्यों हैं, कैसे आए हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं देखो ये कई जन्मों तक ऐसे तर्क वितर्क करके बोलते रहे आत्मा परमात्मा, ये कभी भी भगवत कृपा नहीं पाएंगे, भगवत धाम नहीं जा सकते। इतनी देर में मालती माता जी, मालती देवी प्रसाद लेके आई। प्रभुपाद जी ने प्रसाद को लेके नमस्कार करके लेके मुंह में डाल के कहा हम तो केवल महाप्रसाद खा के भगवत धाम चले जाएंगे, ये जीवन भर ऐसे किताब पढ़ पढ़ के नहीं जा सकते, हम केवल महाप्रसाद खा के ही भगवत धाम चले जाएंगे। तो महाप्रसाद की इतनी महिमा है। तो अब कहते हैं शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मन और बुद्धि स्वस्थ नहीं है। तो चेतना महाप्रभु ने आगे पूछा, प्रभु कहे कौन व्याधि कहता निर्णय, बताओ कौन सी बीमारी है, जरा ठीक बताओ क्या हो गया। तेहूं कहे संख्या कीर्तन ना पूरय, मैं जितना मेरे जीवन में व्रत लिया है नाम जपने का उतना पूरा नहीं कर पा रहा हूं, यही मेरी बीमारी है और कोई बीमारी नहीं है, भगवत नाम लेने में मुझे बहुत बड़ी अब कठिनाई हो रही है। प्रभु कहे वृद्ध हैला संख्या अल्प कर, अब बूढ़े हो गए हो संख्या को कम कर दो, इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिद्ध देह तुम्ही साधने आग्रह केन करे, अब आप तो सिद्ध हो गए हो जप जप करके, अब क्या जरूरत है आपको नाम गिन गिन के जपने की। अब महाप्रभु एक परीक्षा के रूप में ये भाषा बोल रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है ऐसा करने की। ऐसे बहुत से प्रभुपाद जी के शिष्यों का भी जीवन में ऐसा नियम कठिन लिया, भाई 16 माला का नियम लिया है तो कैसी भी परिस्थिति है, बीमार है रोगी है, लेकिन जपने में कभी उसमें उन्होंने आलस नहीं किया, बहुत रोग से पीड़ित एक सन्यासी प्रभुपाद जी के शिष्य सो भी नहीं पाते थे, लेकिन रात को 1 बजे उठ के नाम जप रहे थे तो दूसरे महात्मा जो उनके संग बैठे हुए थे उन्होंने कहा महाराज एक तो आपको नींद सारी रात नहीं आती और दिन में भी नहीं सो पाते हो, अब इस वक्त उठ के क्या नाम जप रहे हो? बोला मेरा आज का जप पूरा नहीं हुआ है। बोला अब क्या जप पूरा हुआ नहीं क्या हुआ? बोला जब से मैं वचन किया है तब से मैंने कभी जप को छोड़ा नहीं है, अब बाकी कुछ दिन जिंदगी के रह गए हैं इसलिए मैं अपने नियम को कैसे तोड़ूं। तो यहां महाप्रभु तो उनको कह रहे हैं कि आप ऐसे करो जब तक कोई भगवत प्रेम में अपने आप परिपूर्ण रूप से भगवत नाम जपने में, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का भी ऐसा ही जीवन का व्रत लिया हुआ था, कितने दंडवत रोज करने हैं राधा कुंड के ऊपर, केवल छाछ चलू भर पीना है, तो वो अपने नेम को अच्छी तरह से पालन किया, कभी नेम को छोड़ा नहीं। तो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपना संख्या पूर्वक, वैसे तो सभी गोस्वामी के लिए हम जानते हैं संख्या पूर्वक नाम गानन्नति भी, तो अपना नाम नेम से लेते थे जितना उन्होंने जीवन में। लोक निस्तारित थे तुम्हारा अवतार, चैतन्य महाप्रभु कहते आप तो संसार के उद्धार के लिए आए, ना मेरे महिमा लोके करीला प्रचार, और आपके द्वारा तो हरिनाम का पूरे विश्व के अंदर प्रचार हुआ है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा था कि देखो हरिदास ठाकुर इतने सारे पापी तापी लोग हैं, यवन हैं मलेच हैं, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आपका अवतार ही लोगों के पतितों के उद्धार के लिए हुआ है, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो भगवान का नाम इतना बलवान है कोई भगवान का नाम पूरा नहीं ले, जैसे कोई कहे कि रथ आ रहा है और महेशी उसके ऊपर चढ़ के आ रही है और अचानक रथ उसके ऊपर चढ़ जाए वो मर जाए, तो रथ से भगवान राह निकाल लेंगे और महसी मैन निकाल लेंगे और कहेंगे इसने राम जपा है, नाम अभास से भी उसको मुक्त कर देंगे। तो ऐसे कोई यवन है, कोई चीज सामने आती है मरते समय कहते हैं हराम है, तो उसमें भगवान कहता है ये हाय राम जप रहा है, तो भी उसको उसका लाभ हो जाता है। और सारे पंजाब वाले तो ऐसे ही अगर राजमा राजमा कहते मर गए तो भी भगवान के धाम चले जाएंगे। क्या है राजमा बनाया है, तो रा और जब मां दोनों राम हो गया। तो इतने भगवान दयालु है कि कैसे भी भगवान का नाम आधा पूरा हंसते मजाक में अचानक निकल जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। और एक बार हरिदास ठाकुर ने ब्राह्मणों को आके कहा महाराज इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हो, मंत्र का जप तो मन से करना चाहिए। बोला मन से करने से अकेला तरता है, और जोर जोर से करने से बेचारा ये कीट पतंग है, ये पक्षी पशु है, ये तो कर नहीं सकते, इनके कान में ध्वनि जाएगी तो सबका उद्धार हो जाएगा। तो सबका तारने का काम कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा, बोला तो आप वैदिक धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे ने लिखा है कि मन से जपना चाहिए। तो दूसरे दिन बेचारा ब्राह्मण को अपराध लग गया, भगवत नाम जपने वाले का अपराध करने का उसको कोड हो गया। तो वहां लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि भगवत नाम का अपराध करने वाले ब्राह्मण को, ये तो कलयुग में लोग ऐसे जगहों पे जन्म लेंगे लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवत नाम को संख्या पूर्वक गा के जीवन को सफल कर लेंगे, वैष्णव बन जाएंगे, और कई राक्षस ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे जो भगवान के नाम जपने वालों को रोकेंगे। कि ऐसा वर्ण आश्रम का कलयुग के अंदर उल्टा परिवर्तन हो जाएगा। सो हरिदास ठाकुर जोर जोर से नाम जपने का नेम था। अब महाप्रभु कहते हैं आप तो आपका अवतार ही इसलिए हुआ है, तुम्हारा अवतार, ये महाप्रभु ने शब्द क्या कहा है, लोके निस्तारी है तुम्हारा अवतार। तो क्या हरिदास ठाकुर का अवतार कैसे हो गया, उसको जन्म कहना चाहिए ना। तो हम ये जानते हैं कि हरिदास ठाकुर कौन है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने यहां ब्रज में जहां भगवान के ग्वाल बाल और बछड़े चुराए थे तो विमोहित होके प्रार्थना की थी, तो मन में समझ लिया कि हमने भगवान और भक्तों को अलग कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो हरिदास ठाकुर के अवतार के रूप में आके बहुत प्रेम से भगवत नाम का जप किया, और इतना जप किया कि महाप्रभु ने उसको नाम आचार्य का उपाधि दे दी के नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। आज भी हम प्रेम ध्वनि में रोज कहते हैं नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो ये ब्रह्मा जी है, और तब हम देखते हैं कि हमारी संप्रदाय के प्रवर्तक भी ब्रह्मा जी है। जब वो इतना संख्या पूर्वक नाम जप रहे हैं तो गौड़ीय वैष्णव में नाम का महिमा ज्यादा है, नाम जपने के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है, और ये ब्रह्मा जी तो हमारी संप्रदाय के प्रवर्तक ही है ना। तो नाम आचार्य वही हरिदास ठाकुर के रूप में आए। तो यहाँ जो अवतारी शब्द कहा है, और आप महनाम की महिमा के प्रचार के लिए आए हैं, ऐसे भक्तों का उद्देश्य ही केवल प्रचार के लिए होता है। एक अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, आप थोड़ा कम नाम करके संकीर्तन करो। हरिदास कहे सुन मोर सत्य निवेदन, आप मेरा सच्ची बात सुन जे, मैं हृदय से आपको कह रहा हूं आप मेरे सत्य को सुन लीजिए। क्या अदृश्य असप्रश्य मोरे अंगीकार कैला, मैं मेरा तो कोई दर्शन करता है तो भी गंगा में स्नान करने जाता है। असप्रश्य जिसको हाथ लग जाए तो किसी को प्राश्चित करना पड़ता है, आपने मुझे अंगीकार कर लिया है, ये उनकी निम्रता है। ऐसे रूप सनातन गोस्वामी कितने निम्र थे, शुद्ध दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण होते हुए भी हुसैन शाह की सेवा करने के बाद अपने आप को अधिकारी नहीं समझा जगन्नाथ मंदिर जाने में। दोनों गए थे जगन्नाथपुरी में, हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे, कभी मंदिर दर्शन करने नहीं गए। तो ये, और वो भी कहते हम पतित हैं, मलेच्छों की सेवा किया है, आपने हमको अंगीकार किया है। रो रवाइते काड़ी मोर वेकुंठ छाड़ीला, मैं तो बहुत नरक रोरव में पड़ा हुआ था, आपने वहां से निकाल के हमारे को वेकुंठ में वास दे दिया, अपना संग दे दिया। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छा मैं, आप तो साक्षात भगवान स्वतंत्र है, जो आपकी मन में आए सो कर सकते हैं। जगत नाचाओ यारे ऐसे इच्छा है, अगर आप चाहो तो पूरा जगत भी हरि नाम संकीर्तन में नाचे और आनंद ले ले, आप तो बड़े दयालु हो, पूरे विश्व के कल्याण के लिए आए हो। अनेक नाचाइला मोर प्रसाद करिला, आपने मुझे तो माध्यम बनाया, आपने मेरे ऊपर कृपा की और बहुत प्रकार से आपने मेरे द्वारा सेवा ली। विप्रे श्राद्ध पात्र खाइमो मले चहिना, आपने कितनी मेरे ऊपर कृपा की। अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध किया था जहां ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, विप्र वेदज्ञ ब्राह्मण को, उन्होंने ब्राह्मण की जगह पे पहले मेरे को भोजन कराया, इतना आपने मेरे को सम्मान दिलाया। अब ये पहले गुणगान, ये एक बात सीखनी चाहिए, यहाँ भी सीखने के मिलती है, भागवत में भी लिखा है, जब कोई प्रार्थना करनी हो अपना व्यक्तिगत इच्छा हो, जो भक्त को होनी नहीं चाहिए लेकिन किसी कारण से हो भी, तो इच्छा को प्रकट करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, साम भगवान की अथवा गुरुजनों की पहले प्रार्थना करके उनकी महिमा का वर्णन करके फिर अपने जो प्रार्थना है उसको निम्रता से बोलना चाहिए। अनेक नाचाइला मोर प्रसाद करिया, विपरे श्राद्ध पात्र खाइमो मले चहिना, मेरे को तो आपने इतना बड़ा अद्वैत आचार्य घर में सम्मान दिलाया, ब्राह्मण के जगह पे मुझे श्राद्ध खिलाया। एक वांछा है मोर बहु दिन हईते, अब अपनी बात कर रहे, एक मेरी इच्छा है बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ, लीला संभारे तुम्ही है मोर चित्ते, मैं जानता हूँ कि अब आप जाने वाले, आपकी लीला अब आप पूरी करने वाले हैं। यहाँ भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं प्रकट लीला, वो अवतार काल में होती है और वो नित्य नहीं होती है, वो नैमित्तिक लीला होती है, जब अवतार होता है तब वो लीला करते हैं, उसको कहते हैं नैमित्तिक लीला है, प्रकट लीला है, व्यवहारिक लीला है। और दूसरी भगवान की लीला होती है वो नित्य लीला होती है, अप्रकट लीला होती है, वो सदा चलती रहती है। तो अब आप प्रकट लीला को समाप्त करके, अप्रकट नित्य लीला तो आपकी रहेगी लेकिन अब प्रकट लीला आप अपने संवरण करने जा रहे हैं। लीला संवारी बारे तुम्ही है मोर चित्ते, मैं जानता हूँ कि अब आप अपनी लीला को, बाहरी लीला को, प्रकट लीला को, व्यवहारिक लीला को अब आप संवरण करने पूरी करने जा रहे हैं। सही लीला प्रभु मोरे कभी ना देखाई बा, मैं ये दुख नहीं सह सकूंगा, आप जब यहाँ से चले जाएंगे और आपके न देखने का जो मुझे विरह की पीड़ा होगी वो मेरे से सही नहीं जाएगी। आपना रागे मोर शरीर पाड़ी बा, मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर में आपका दर्शन करते हुए पहले ही छोड़ दूँ, आपके जाने के बाद शरीर छोड़ो, ये मैं बाद में सहन नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे भक्तों का भाव अद्भुत होता है। रघुनाथ दास 16 साल चेतना महाप्रभु के संग में रहे, स्वरूप दामोदर के संग, चेतना महाप्रभु ने अपनी लीला को तोता गोपीनाथ में प्रवेश करके जैसे संवरण किया तो बहुत बड़े दुखी हुए स्वरूप दामोदर के संग, थोड़ा सा आश्रय मिला, स्वरूप सा दामोदर भी कुछ ज़्यादा रह नहीं पाए, उन्होंने जैसे नित्य लीला में प्रवेश किया, वृंदावन में आए, कहा गोवर्धन से कूद जाऊं कि जमुना में अब मैं डूब जाऊं, अब मैं जी नहीं सकता, मेरे प्रभु को और फिर स्वरूप दामोदर मेरे गुरु जी के समान, उन दोनों का विरह, तो सब गोस्वामी ने मिल के कहा, आप भगवान चैतन्य महाप्रभु के लीला के साक्षी हैं, आप प्रतिदिन उनकी लीला का श्रवण वर्णन कीजिए, हम सब वो सुनना चाहते हैं। तो कम से कम 3 से 4 घंटे रोज रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु की, जगन्नाथ की लीलाओं का वर्णन करते थे। ये भगवत गीता के इस श्लोक से बिल्कुल मिलता है। मच्चद मद मदचित मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। नहीं तो भक्त के प्राण निकल जाएंगे भगवान याद नहीं आए तो, लेकिन जब भगवान की कथा करते हैं तो भगवान में और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। तो 4 घंटे रोज की धारावाहिक कथा करते थे और फिर अन्य गोस्वामियों से भागवत की कथा सुनते थे, तो ऐसे अपने जीवन का निर्वाह चला सके, नहीं तो रहना मुश्किल है। हृदय धरी मा तुम्हारा कमल चरण। अब अपनी इच्छा क्या बता रहे हैं कि आपके चरण कमल को मैं अपनी छाती के ऊपर हृदय पे ऊपर रख लूंगा। नयन देखूं मो तुम्हारा चंदन वदन, और आंखों से मैं आपका मुख चंद्रमा की तरह जो शीतल मुख है इसका दर्शन करूंगा। और फिर कहते हैं, जी भाए उचारी मो तुम्हारा कृष्ण चैतन्य नाम, और जी भा से मैं श्री कृष्ण चैतन्य कहूंगा। ए मत मोर इच्छा छाड़ी मो प्राण, मेरी इच्छा है कि ऐसे मैं अपना प्राण छोड़ूं, कि आपका चरण मेरे हृदय पे हो, आपके मुख के ऊपर मेरे खुले हुए नैन लगे हों और मेरी जीभा से श्री कृष्ण चैतन्य ऐसा उच्चारण हो। मोरे इच्छा यदि तुम्हारा प्रसाद है, अगर आपकी कृपा हो तो मेरी ये इच्छा है। ए निवेदन मोरा कर दया मोय, मैं तो आप दयालु के चरणों में ये प्रार्थना ये निवेदन कर रहा हूं। प्रभु कहे हरिदास ये तुम्ही मागीवे, कृष्ण कृपा मय तहा अवश्य करीवे। महाप्रभु ये नहीं कहने का मैं करूंगा, तुमने ये मांगा है, कृष्ण बड़े दयालु है, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अब क्या होता है, किंतु हमारा ये किछु सुख सब तुम लेना, तुम्हारा योग्य नहीं यावे हमारा छाड़ीबा। मतलब मुझे जो सुख मिल रहा है वो तेरे कारण से है हरिदास, तेरे नाम उच्चारण से मुझे प्रसन्नता मिल रही है। ये इसको कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना। हमारे नाम जपने का उद्देश्य क्या है, कृष्ण प्रीति अर्थे, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नाम जपना चाहिए। और यहां महाप्रभु कहते हैं मुझे बहुत सुख मिल रहा है तुम्हारे नाम जपने से। प्रभुपाद जी को शिष्य ने पूछा कि मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, बोले जब आप भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो कृष्ण की प्रसन्नता ही गुरुजन की प्रसन्नता है और ये जीवन का लक्ष्य। तुम्हारा योग्य नहीं या भी हमारा छाड़ी बा, कि तुम्हें ऐसे छोड़ूं ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। और फिर चरणे धरी कहे हरिदास ना करिया माया। हरिदास चरणों को पकड़ के कहते हैं अब आप अपनी माया से मुझे भ्रमित मत करो। अगर मानो कोई कहे कि तुम्हारे बगैर मैं कैसे रह सकता हूं तो कहते कोई बात नहीं मैं बैठा हूं। ये महाप्रभु एक परीक्षा ले रहे हैं, कहते हैं चरणे धरी कहे हरिदास ना करी वा माया, ये माया मेरे ऊपर माया का जाल मत करो। अवश्य मो अधमे प्रभु करिए दया, मैं अधम हूं मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर अब माया ये माया मत चलाओ कि आप मेरे बगैर रह नहीं सकते। मोर श्रोमणि कत कत महाश्यारे, मेरे से ज्यादा श्रोमणि कितने बड़े महात्मा आपके चारों ओर बैठे हैं। ये स्वरूप दामोदर है, रामानंद राय है, ये कितने और रूप सनातन आदि आपके पार्षद हैं, मेरे को क्या पूछेंगे। तुम्हारा लीला रस सहायक कोटि भक्त है, आपकी लीला में सहायता वाले तो कोटि भक्त हैं, मेरे अधम के ऊपर कृपा करो, आप मेरे को माया में मत डालो। अमा है न यदि एक कीट मरी गेला रे, मेरे जैसा एक कीड़ा मर गया तो कौन सा एक पीपली की मैले पृथ्वी रे कहाँ हनी हेला। ये मेरे जैसा कीट पतंग कोई मर गया तो क्या फर्क पड़ेगा, और एक अगर छोटी सी चींटी मर जाएगी तो पृथ्वी के ऊपर कौन सा कमी हो जाएगी। अपने आप को इतना निम्रता पूर्वक कह देंगे। भक्त वत्सल प्रभु तुमी मुई भक्ता भास अवश्य पूरी बे प्रभु मोर ए आश। मैं तो भक्त भी नहीं हूं, आप भक्त वत्सल हो, मैं भक्त आभास हूं, मैं भक्त का नाटक कर रहा हूं। आभास का मतलब मैं भक्त नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तभी महाप्रभु तहार करीला आलिंगन मध्यान करी समुद्र करीला गमन। तो महाप्रभु ने उनको अपने छाती से लगा लिया, बाहों में भर लिया और फिर वहां से समुद्र में स्नान करने के लिए गए। प्रातः काले ईश्वर देखी सब भक्त लाइना, और दूसरे दिन सुबह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके सब भक्तों को लेकर हरिदास देखी थे आयला शीघ्र करिया। बहुत जल्दी हरिदास ठाकुर को देखने के लिए चेतना महाप्रभु आए। हरिदास रे आगे आई से दिला दर्शन, हरिदास के आगे आके भगवान ने दर्शन दिया। हरिदास वंदिला प्रभु और वैष्णव चरण। चेतना महाप्रभु का और सब वैष्णव जो आए थे उनको हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना करके सबकी वंदना की। प्रभु कहे हरिदास कहे समाचार। क्या समाचार हरिदास, क्या विचार है? हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुम्हार। बस जो कुछ समाचार एक ही है कि आपने बड़ी कृपा की है, आप आ गए, आपने बहुत बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर। अंगने अमारा भीला प्रभु महासंकीर्तन वक्रेश्वर पंडित तहां करे नर्तन। ये जैसे ही चेतना महाप्रभु ने सुना कि आपने बड़ी कृपा की है, तो चेतना महाप्रभु ने वहीं जो जहां हरिदास ठाकुर रह रहे थे उसी आंगन में बहुत मधुर हरिनाम संकीर्तन शुरू किया, और उसके अंदर मुख्य नृत्य करने वाले थे वक्रेश्वर पंडित। स्वरूप गोसाई आदि यत प्रभु गण हरिदास बेड़ी करे नाम संकीर्तन। सारो अरे स्वरूप दामोदर आदि जितने भी भक्त थे, बेड़ी का मतलब हरिदास ठाकुर के चारों ओर घेर कर और हरिनाम संकीर्तन करने लगे। अब चारों ओर भगवत नाम की कीर्तन की ध्वनि होने लगी। रामानंद स्वर भौम सवार अगरे हरिदास गुण प्रभु लागिला कहले। अब तो बहुत बड़े महात्मा जो खड़े थे वहां, रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके सामने चेतना महाप्रभु अपने मुख से हरिदास ठाकुर की महिमा गाने लगे कि कैसे ये महान है। वो महिमा हरिदास गुणे सबारा विस्मित तो है मन, सबको आश्चर्य लगा क्या गुण गाए होंगे हरिदास ठाकुर के। मुसलमानों ने, राजा ने तो कहा था कि 22 जहां चौराहे हैं बाजार पे इसको कोड़े लगा के मार दो, और कोड़े वाले कोड़े लगा रहे थे, ये कीर्तन कर रहे थे। कोड़े वाले हाथ जोड़ के कहते हैं आप नहीं मरोगे तो राजा हमको मार देगा। अच्छा आपको राजा मार देगा? हृदय में दया आई और समाधि में हो गए और राजा के सामने ले गए और कहा ये मर चुका है, इसको गंगा में डाल दो। और गंगा में बहते हुए फिर फुलिया ग्राम के पास आए तो निकल के बाहर बैठ गए और फिर कीर्तन करने लगे। और जब ये पता लगा राजा को, मुसलमान राजा और काजी वहां आके उनके चरणों में गिरे, समझे कि मरने के बाद जिंदा हो गया, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, प्रणाम करके क्षमा याचना करके चले गए। और चेतना महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में सात पहर का मतलब 21 घंटे 21 घंटे की महाप्रकाश लीला कर रहे थे, तब हरिदास ठाकुर को कहा सुनो हरिदास उस दिन जब तुमको कोड़े मार रहे थे तो मैं सुदर्शन चक्र लेके उनका गर्दन काटने के लिए आ गया था, लेकिन आपने बार बार कहा कि भगवान इनके ऊपर दया करो, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर दया करो। अब मैं इनको मार नहीं सकता था क्योंकि आप इनको इनकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, फिर मैं क्या कर सकता। मैंने अपने आप को तुम्हारी पीठ के ऊपर चादर की तरह ढक दिया था, तुम्हारे को जो मार रहे थे कोड़े, उस वक्त चैतन्य महाप्रभु ने अपने पीठ के ऊपर से चादर को दूर करके कहा, देखो ये सारे निशान अभी तक मेरी पीठ के ऊपर पड़े। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे हरिदास ठाकुर के गुणगान करने लगे कि साक्षात माया देवी इसको बदनाम करने के लिए रामचंद्र खान ने भेजी थी, लेकिन माया देवी को दीक्षा देके माया देवी के गुरु बने तुलसी के सामने, वो हरे कृष्ण मंत्र जपने लगी और ये वहां से भी विजयी होके आ गए। ऐसी महिमा गाने लगे, हरिदास गुणे सभी विश्व में हिला, सर्व भक्त बंदी हरिदास चरणे, और सबने हरिदास को की महिमा गाई और उनकी वंदना की। हरिदास निज आगरिते प्रभु बसाइला, निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला। अब चैतन्य महाप्रभु को अपने सामने बिठा दिया है, अपने दोनों आंखों के भंवर जैसे हो वो चैतन्य महाप्रभु के मुख के ऊपर केंद्रित कर लिए हैं, और फिर स्वहृदय आनी धरिला प्रभुर चरण, अपने हृदय के ऊपर भगवान के चरण कमल को रख लिया है चैतन्य महाप्रभु के। सर्व भक्त पदे रेणु मस्तक भूषण, और सब भक्तों के चरण की धूली लेके अपने सर के ऊपर लगाई है। चैतन्य महाप्रभु का चरण हृदय पे रखा है और भक्तों की धूली तो हृदय से भी ऊपर सर के ऊपर लगाई है, भगवान से भी भगवान के भक्तों को ज्यादा सम्मान दिया। भगवान के भक्तों की चरण धूली अपने हृदय पे लगाई है, और फिर श्री कृष्ण चैतन्य सभी बोले न बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार, और सब भक्तों के सामने कहता श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य का कीर्तन करो, और भगवान के मुख के जो जो मधुर जो जो रस, अरे भगवान के मुख का रस क्या है, अधरों का रस क्या है, प्रसाद भगवान का अधर रस है, भगवान का मुख रसमय है, उसको पान करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब क्या होता है, श्री कृष्ण चैतन्य सभी करीबे उच्चारण, नामेर सहित प्राण आइला उत्क्रामण, ओ श्री कृष्ण चैतन्य कहते कहते ही प्राण उन्होंने अपना छोड़ दिया। और तब लिखा है महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मेरा निर्याण सबारे हिला सुमरण। जैसे बड़े योगी अपनी इच्छा से प्राण त्यागते हैं, ऐसे आज अपनी इच्छा से हरिदास ठाकुर प्राण त्याग रहे हैं। ये देखकर सबको भीष्म पितामह की याद आ गई कि कैसे भीष्म पितामह के ऊपर कृपा करके साक्षात श्री कृष्ण सामने खड़े थे। आज ये दूसरा उदाहरण है कि हरिदास के सामने साक्षात चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों को अपने हृदय में धारण करके मुख खुले नेत्रों से ये बहुत इच्छा मृत्यु का इच्छा स्वच्छंद मृत्यु अपनी इच्छा मृत्यु के ये उदाहरण हैं, जब चाहें अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। हरि हरि कृष्ण शब्दे सबे करे कोलाहल, सबने हरि 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 बोल, हरि प्रेमानंदे महाप्रभु हैला विवला। और महाप्रभु प्रेमानंद में बहुत विवल हो गए क्योंकि अपना एक भक्त वापस भगवत धाम जा रहा था, बड़े आनंदित हो गए। और हरिदासेर तनु प्रभु कोले हलीला उठाइला, उसके उस शरीर को अब महाप्रभु ने उठा लिया। अंगन नाचे न प्रभु प्रेमाविश लैया, और फिर उसको शरीर को हाथ में लेके महाप्रभु बहुत नृत्य करने लगे। प्रभु आवेशे आवेशे सर्व भक्त गण प्रेमावेशे सभी नाचे करे न कीर्तन। अब तो सारे ही भक्त आनंद में मगन होके कीर्तन करने लगे। ते ही मते नित्य प्रभु कैला कटक्षण स्वरूप गोसाई प्रभु करिला सावधान। बहुत समय तब ऐसे कीर्तन हो रहा था, उनका सब हाथ में लिया हुआ था, तब सर्व दामोदर ने चेतना महाप्रभु को सावधान किया और सबको सावधान किया। अब क्या होना है? हरिदास ठाकुरे तबे विमाने चढ़ाई ना, तब तो विमान बनाया। एक तो होता है शव ले जाने के लिए अर्थी ले जाने वाली बनाते हैं, लेकिन जब साधु महात्मा जाते हैं तो उसके लिए वैकुंठ का विमान बनाते हैं। अपने ऐसे जो महात्माओं का जब शरीर छोड़ना होता है ना, तो एक विमान बनाते हैं, उसको बिठाते हैं, सुलाते नहीं हैं। सामान्य लोग मर जाते हैं उनको तो अर्थी पे सुलाते हैं, लेकिन साधु महात्मा को एकदम बिठाते हैं और सीधा बिठा के फिर विमान में बिठा एक विमान बनाते हैं, जैसे वैकुंठ के विमान का है, और फिर उसका भ्रमण कराते हैं पूरे नगर का। और उसके बाद तो विमान चढ़ाया समुद्र लइया गेला तबे कीर्तन करिया, तो फिर समुद्र के किनारे विमान में लेकर आए और आगे महाप्रभु चले न नृत्य करीते करीते। आगे महाप्रभु नृत्य करते चलते हैं, पाछे नृत्य करे वक्रेश्वर भक्त गण साथे, और वक्रेश्वर पंडित और सारे भक्त पीछे नृत्य करते आ रहे हैं। हरिदास समुद्र जले स्नान कराईला, हरिदास को स्नान कराया समुद्र के जल में। प्रभु कहे समुद्र ही महातीर्थ हिला, आज से ये समुद्र महातीर्थ हो गया। तो पुरी के समुद्र को महातीर्थ का वरदान दे दिया चेतना महाप्रभु ने कि हरिदास ठाकुर की समाधि इस जल में हुई है। और फिर लिखा है हरिदासेर पादो तक पिए भक्त गण। अब हरिदास के चरणों का चरणामृत सब भक्तों ने लिया। हरिदासेर अंग दिला प्रसाद चंदन, और हरिदास के अंग के ऊपर जो भगवान जगन्नाथ को चंदन, भगवान जगन्नाथ साल में एक बार, जैसे हमारी चमड़ी है ऐसे तो जगन्नाथ जी के विग्रह के ऊपर होता है रेशमी कपड़ा, जैसे हमारा मांस है उस जगह पे भगवान जगन्नाथ के लिए चंदन का लेप होता है मोटा मोटा इंच आधे आधे इंच का। तो जब साल में एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले उनको दोबारा ठीक करते हैं तो वो चंदन प्रसाद के रूप में मिलता है, तो वो चंदन प्रसाद हरिदास के श्री विग्रह के ऊपर लगाया। और फिर डोरे कड़ार प्रसाद वस्त्र अंग दिला, जो रथ यात्रा में खींचने वाली रस्सी होती है उसको डोरी, हाँ कड़ार प्रसाद वस्त्र अंग दिला, और थोड़ा प्रसाद और कपड़ा जो चेतन वो सब वालोकार घर करी तहा स्वाइला, और फिर एक खड्डा बनाया धरती में और उसमें हरिदास ठाकुर को बिठा दिया। चारी दिखे भक्त गण करे न कीर्तन वक्रेश्वर पंडित करे न आनंद नर्तन, सब जगह कीर्तन हो रहा है नृत्य हो रहा है। अब ये हम कहेंगे फिर कथा के समापत का, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भले घोराए गौरचंद्र गौर भगवान कहते हैं हरि बोलो हरि बोलो। आपने श्री हस्ते बालो दिला तार गए अपने हाथों से ऊपर, फिर बालू देने लगे हरिदास ठाकुर के शव के ऊपर। तहारे बालू दिया परे पिंडो बांधाइला, उसके बाद ऊपर एक चौकी बनाई, चौकी पिंडेर महा आवरण कैला, और फिर उस स्थान के चारों ओर एक बार दे दी ताकि इसका कोई निरादर न हो। वही जगह है समुद्र के किनारे जहां अब हरिदास ठाकुर का समाधि है, उसी जगह पे समाधि। तोता गोपीनाथ से नीचे उतर के समुद्र की तरफ जाएंगे तो हरिदास ठाकुर की समाधि का मंदिर आएगा, और उसी के सामने भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना जगह भक्ति कुटीर बनाया था। कल भक्ति विनोद ठाकुर का कल तिरुभाव तिथि था। आविर्भाव तिथि था। भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत दुख होने लगा जब अपसंप्रदायें बहुत हो गई, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर उनको कहे कि अब आप ऐसे करो, जगन्नाथपुरी चले जाओ, हरिदास ठाकुर की समाधि के सामने कुटिया बनाओ और निरंतर भगवत नाम जपो। तो ये बहुत रहस्यमय भक्ति विनोद ठाकुर को साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर कहा, और उन्होंने जाके वहाँ भक्ति कुटीर बनाई और हरिदास ठाकुर की समाधि के सामने बैठ के निरंतर कीर्तन करते थे। तो ये वो जगह की बात है, इस स्थान को महाप्रभु ने अपने हाथ से ऐसे किया। तथा बेरी प्रभु कैला कीर्तन नर्तन करी ध्वनि होला होले हरि अला भुवन, इतना कीर्तन हुआ कि उसकी ध्वनि आकाश तक पहुंचने लगी और हरिदास प्रदीक्षिणा करी आयला सिंह द्वार। फिर हरिदास के जो समाधि का स्थल बनाया था चौकी, उसकी परिक्रमा करके सिंह द्वार पे आए और हरि कीर्तन होला हल शकल नगर, और पूरे नगर में कीर्तन का हल्ला हो गया। और फिर क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु वहां जाके, सिंह द्वारे आसी प्रभु पसारीला ठाई अंचल पातिया प्रसाद मांगीला। और जितने वहां जो आनंद बाजार में प्रसाद रखते हैं अपना, इसे कपड़ा बाहर करके बोला आप कुछ प्रसाद दीजिए, हरिदास ठाकुर का हमारे को उत्सव मनाना है। अब हरिदास ठाकुर के उत्सव की बात हो रही है तो फिर स्वरूप दामोदर ने कहा आप बैठ जाइए, और सब लोग इतना प्रसाद जितना था सब ले आए। महाप्रभु मांगा तो सब उन्होंने कहा नहीं नहीं सब दो 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 जो है अपना बर्तन जितना प्रसाद दीजिए। फिर प्रसाद सबको कैसे खिलाया, महाप्रभु कहा जब तक आप नहीं खाएंगे सब नहीं खाएंगे। फिर महाप्रभु बैठ गए, कैसे बैठे, स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर चारी जन परिवेशन करे निरंतर। ये चार आदमी के नाम लिए, ये महात्मा स्वरूप दामोदर जगनानंद काशेश्वर और शंकर, ये प्रसाद सबको पवाने लगे। और चेतन परमा पूरी भारती र संगे प्रभु भिक्षी भिक्षा करीला। तब जो ब्रह्मानंद परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती के साथ महाप्रभु बैठे और फिर प्रसाद का आस्वादन करने लगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। अब इसका श्रुति फल इस अध्याय का सुन लेते हैं। अब महाप्रभु कहते कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छे संग, कृष्ण ने कृपा की हरिदास ठाकुर का मेरे को संग दिया। स्वतंत्र कृष्ण रे इच्छा कैला संग भंग, आज कृष्ण स्वतंत्र है, आज मेरे को उनसे अलग भी कर दिया, ये कृष्ण ने अपनी इच्छा से किया। और अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जय जय हरिदास बलि करे हरि ध्वनि, बोलो जय जय हरिदास। एति बोली महाप्रभु नाचे न आपनी हरि बोल, जय जय हरिदास, जय जय हरिदास। और तभी महाप्रभु सब भक्ते विद्या दिला, हर्ष विषादे प्रभु विश्राम कैला। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा बाप जाइए, हृदय में दुख भी था कि हरिदास से अलग हो गए और आनंद भी था कि वो अपने धाम चले गए। और फिर अब कह रहे हैं कविराज गोस्वामी एत कहिलो हरिदास विजय, ये तो मैं हरिदास की विजय की बात किया, जहार शरवणे कृष्णा दृढ़ भक्ति है, जिसने जो इसका श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, ये इसका श्रुति फल है। हाँ, ओ इसके ऊपर चैतन्य शिला प्रभुपाद ने लिखा है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी तोटा कोपीनाथ से नीचे जैसे जाएंगे हरिदास ठाकुर के स्थान है। इन भक्ति रत्नाकर में इसका पूरा विवरण दिया हुआ है कि किस जगह पे ये जगह है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भव सिंधु तारी बारे आए छे यार चित्त, श्रद्धा करी सुने चेतन चरित्र। जिसको भवसागर पार करना हो वो ये भगवान श्री चेतन महाप्रभु का अपने भक्तों के साथ चरित्र इसको सुने और अपने जीवन को सफल करे। अब हरिनाम संकीर्तन का आज दिन है, हरिनाम संकीर्तन के आचार्य की ये कथा सुनने से भी हमारा हरिनाम की महिमा का वर्णन हो गया। वैसे चेतन महाप्रभु ने एक बार हरिहर नाम हरिहरनाम एव केवलम कलव नास्ते व नास्ते व गतिरनता इसी श्लोक की व्याख्या की है आदि लीला में। उसमें ये कहते हैं कि कली काले नूम नाम रूपे कृष्ण अवतार, कल युग में भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार है। और तीन बार इसमें बोला है, इसका मतलब और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, न कर्म से न ज्ञान से न योग से, केवल हरि नाम से ही कलयुग में किसी का निस्तार हो सकता है। तो ये हरि नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले हरि नाम ऐसे नहीं था, चैतन्य महाप्रभु आए तब हरे कृष्ण मंत्र ये महामंत्र हमको मिला है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये गोलोक में राधा रानी का तंत्र है जिससे वो कृष्ण को अपने वश में करके रखती है। कृष्ण के विरह में जब वो होती है राधा रानी तो ये हरे कृष्ण मंत्र का गान करती है। चेतन महाप्रभु राधा भाव में आए तो इस मंत्र को साथ लाए। इससे पहले अन्य युगों में दूसरे मंत्र होते थे, कृष्णाय वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय, ऐसे बहुत अन्य मंत्र है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र महाप्रभु के आने से पूर्व नहीं था। और महाप्रभु एक बार आए ऐसा नहीं है, जैसे श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंत में आते ही रहते हैं निरंतर, ऐसे भगवान चेतना महाप्रभु किसी कृष्ण स्वयं भगवान के प्रकट्य के बाद कलयुग के प्रथम चरण में आते हैं, तब ये हरे कृष्ण मंत्र इस धरती के ऊपर आता है। तो अब चेतना महाप्रभु के पार्षदों में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमने माँ के गर्भ में भगवान से वचन किया था कि हमको यहाँ से निकालो, तो अब आप जाग जाओ और चेतना महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र लाए हैं, आप मांग के ले लो और इस मंत्र का जप करके अपने जीवन को सफल कर लो। हाँ, चेतना महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र लाया, ले ले मांगी, मांग के ले लो, इसका मतलब आप मांग के ले लो और इसका जप करके अपने जीवन को सफल बनाओ। जैसे चेतना महाप्रभु की कृपा से हरे कृष्ण मंत्र जपने से हरिदास ठाकुर का इस सरांसार से जाना अद्भुत हुआ, ऐसे भगवान के नाम जपने वालों का हमने आंखों से देखा है कि अंत समय में कम से कम 5-7-8 भक्त चारों ओर बैठ के कीर्तन करते हैं और कीर्तन की ध्वनि सुनते सुनते वो इस संसार से जाते हैं। ऐसे एक नहीं, कम से कम 8-10 भक्तों को तो हमने वृंदावन से ऐसे जाते हुए देखा है। तो ये भगवत नाम जपने वालों की विजय है कि अंत समय कुछ भागवत भक्त चारों ओर बैठ कर भगवान के नाम का कीर्तन करें जैसे महाप्रभु ने कीर्तन किया। और भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर है नहीं, तो हरिदास ठाकुर के तिरुभाव तिथि पे हमारा विश्वास भगवान के नाम में बढ़े और हम उनकी कृपा से अच्छी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।